ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. ஆஜ கா ஜோ விஷய ஹை விக்ன விநாஷக் ஸ்திதி. மேரா சிந்தன் சல் ரஹா தா கி விக்ன விநாஷக் ஸ்திதி சஹி ஹை கஹனா या निर्विघ्न स्थिति कहना सही है? क्या बनना चाहते हैं? निर्विघ्न बनना चाहते हैं ना? विघ्न विनाशक हूं ये स्वमान अगर लेंगे तो इसका मतलब विघ्न आएगा और मैं विनाश करूं, तो विघ्नों का भी आवाहन हो जाता है उसमें, तभी तो विघ्न विनाशक बन सकते हैं। लेकिन जब हम अपने अंदर ये स्वमान लेते हैं मैं निर्विघ्न हूं, तो अगर कोई विघ्न आ भी रहा है तो क्या होगा? निर्विघ्न के साइड से निकल जाता है। निर्विघ्न हो ना तो वो छू नहीं सकता है, मेरी स्थिति को नहीं छू सकता है। लेकिन विघ्न विनाशक ये स्वमान उनके लिए सही है जिनके जीवन में प्रॉब्लम चल रहा हो, बहुत बड़े विघ्न चल रहे हो, तो उस समय जब वो स्वमान लेते हैं मैं विघ्न विनाशक हूं, अर्थात उस विघ्न जो चल रहा है उसके ऊपर विजयी होने का अनुभव करना। लेकिन वैसे अगर ले लिया, कोई विघ्न है नहीं और आप बार बार अपने आप में ये स्वमान लो मैं विघ्न विनाशक हूं, मैं विघ्न विनाशक हूं, तो विघ्न विनाशक हूं वो कब होगा? विघ्न आएगा, उसके साथ संघर्ष करो, विजयी हो, और तब कहेंगे कि हाँ मैं विघ्न विनाशक। तो आवाहन क्यों करने का? अननेसेसरी हमें आवाहन करने की जरूरत है क्या? वैसे ही आज की दुनिया के अंदर लोगों के जीवन में इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और प्रॉब्लम्स चाहिए क्या? और प्रॉब्लम्स तो कोई को नहीं चाहिए, जो है वही निपट जाए, यही अंदर में सोचते हैं। दूसरी बात कि जैसे कोई भी विघ्न जीवन के अंदर, विघ्न आना भी एक प्रकार से अच्छा माना जाता है, क्योंकि तभी हम जीवंत रहते हैं। अगर कि विघ्न नहीं तो उसकी क्षमता कितनी है, उसकी शक्ति कितनी है, वो पता कैसे चले? विघ्न होंगे तभी तो जीवंत रहेंगे, है ना? किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि चुनौती हरेक के जीवन में आती है, चुनौतियां हरेक के जीवन में आती है, लेकिन किसी किसी के लिए यही चुनौती अवसर बन जाती है, आगे बढ़ने के अवसर बन जाते हैं। लेकिन किसी किसी के लिए यही चुनौतियां पछाड़ती है, और इतना पछाड़ती है जो उसको समझ में ही नहीं आता है मैं क्या करूं। तो चुनौती आना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन या उसको अवसर में बदल दो आगे बढ़ने के, या उससे हार खा करके पछाड़ने वाली स्थिति का अनुभव करो। दो ही औरते हैं। अब अवसर किसके लिए बनता है और वही चुनौती पछाड़ती किसको है? जैसे ना अच्छे अच्छे को समय पछाड़ता है, ये चुनौती यहां पछाड़ती है, तो किसको पछाड़ती है, किसके लिए अवसर बन जाता है? तो बहुत सुंदर वहां लिखा हुआ था कि चुनौती के वक्त जो सही निर्णय लेता है उसके लिए वो चुनौती अवसर बन जाती है आगे बढ़ने की। लेकिन चुनौती के वक्त जिसने गलत निर्णय लिया उसके लिए वही चुनौती उसको पछाड़ती है। अब सही निर्णय और गलत निर्णय लेने का आधार क्या, तो वहां बहुत सुंदर बात लिखी हुई थी कि चुनौती के वक्त जिसके मन और बुद्धि की लाइन क्लियर है, स्पष्ट है, वो सही निर्णय लेता है, निष्पक्ष होकर के निर्णय लेता है। परंतु चुनौती के वक्त जिसका माइंड कंफ्यूज है, ये करूं, ऐसा करूं, क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है अंदर में, वो गलत निर्णय लेता है। और जो गलत निर्णय लेता है तो वह चुनौती, वह विघ्न उसको पछाड़ने का अनुभव कराता है, जैसे उसको पछाड़ रहा है। बाबा भी हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कई बार कि बच्चे अंदर विघ्न आना ये कोई बुरा नहीं है, क्योंकि कोई भी विघ्न आता है आगे बढ़ाने के लिए ही आता है। तीन कारण से विघ्न जीवन के अंदर आता है, विघ्न जीवन के अंदर तीन कारणों से आता है, या तो वो आगे बढ़ाने के लिए आता है, या तो कोई अनुभव देने के लिए आता है, या कोई शिक्षा देने के लिए आता है, या कोई सीख देने आता है, या अनुभव बढ़ाने के लिए आता है, या हमें कोई न कोई तोहफा देने के लिए आता है, कुछ न कुछ देने के लिए आता है, आगे बढ़ाने के लिए आता है। तो विघ्न आने का ये तीन कारण होता है। सीख जीवन के अंदर, जैसे बाबा कई बार कहते, बाबा इतना ज्ञान हमें देता है मुरली के अंदर, लेकिन उस सीख को मैंने सीखा ही नहीं, बाबा ने सिखाया समझ में ही नहीं आया, सीखा ही नहीं। तो समय सिखाता है। समय कैसे सिखाएगा, विघ्न के माध्यम से सिखाता है। अब वो सीख मिली तो वो तो अनमोल है ना। जिसने वो सीख प्राप्त कर ली वो दोबारा फेल हो सकता है, दोबारा फेल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सीख हमेशा याद रहेगी। और इसीलिए जैसे ही वो सीख हमेशा याद रही तो दोबारा फेल होने की मार्जिन नहीं। अच्छा, या तो वो अनुभव देने आया, बाबा हमेशा बच्चों को कहते हैं कि अनुभवी मूरत बनो, अनुभवी मूरत। क्यों? क्योंकि अनुभवी के आगे माया कितने भी अलग अलग स्वरूप में आए भी अनुभवी पहचान जाता है। अनुभवी जिंदगी भर कभी भी फेल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे अनुभवी मूरत नहीं बने, वैसे कैसे बनना होता है अनुभवी मूरत? बाबा कहे अनुभवी मूरत बनो, कैसे बनेंगे अनुभवी मूरत? अनुभवी मूरत बनने के लिए बाबा ने जो ज्ञान रत्न हमें दिए हैं उस ज्ञान रत्न का प्रैक्टिकल प्रयोग करो। जीवन एक प्रयोगशाला है। जिस तरह स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट जो होते हैं उनको टीचर एक होता है थियोरेटिकल सुना देते हैं, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट हो, फिजिक्स का सब्जेक्ट हो, तो थियोरेटिकल बता देते हैं कि भाई ये केमिकल मिलाओ तो ये हो जाएगा, थियोरेटिकल। लेकिन वो भूल सकते हैं। लेकिन अगर उस देने के बाद उसको लैब में ले जाते हैं, इसलिए हर स्कूलों में लैब जरूर होती है। अब लैब में ले गए और वहां सबको वो केमिकल दिया, प्रयोग करो भाई, पानी कैसे बनता है? तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की दो मात्रा, ऑक्सीजन की एक मात्रा लिया तो पानी बनेगा, है ना? ओरली सिखा दिया, लेकिन उसके बाद जब लैब में ले जाते हैं, प्रयोगशाला में ले जाते हैं, सबको हाइड्रोजन दिया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है, अब मिलाओ, कैसे मिलाते हैं? पानी बना, हाँ, अभी कभी भूल नहीं सकता कि पानी कैसे बनता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन माना पानी बनेगा, वो भूल जाएगा? कभी नहीं भूलेगा, अनुभवी हो गया। अनुभवी कब बना? जब प्रयोगशाला में प्रयोग किया तो अनुभवी बना। इसी तरह बाबा जो रोज सुबह मुरली हमें सुनाते हैं, ये मुरली थियोरेटिकल है, थियोरी है पूरी, लेकिन ये थियोरी को जीवन की प्रयोगशाला में क्या करना पड़ेगा? प्रयोग करना पड़ेगा। और जब उन ज्ञान की बातों का हम प्रयोग करते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे आत्माभिमानी बनो या देही अभिमानी बनो, और देही अभिमानी बन करके आपने ये कर्म किया तो उस कर्म के अंदर कभी कोई त्रुटि आ नहीं सकती है, चलो प्रैक्टिकल करके देखो। तो एक एक महावाक्य का, दादी गुलजार हमेशा ये बात कहती है कि चलो वरदान ही ले लो, आज का वरदान, और आज के वरदान का प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखो। अच्छा, वरदान नहीं करना, स्लोगन ले लो, स्लोगन का वरदान पूरा याद नहीं रहा। वैसे अगर वरदान याद रहे और उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करे, अनुभव ये कहता है कि हर रोज एक नया वरदान आप जीवन में अनुभव करेंगे, ऐसा महसूस होगा बाबा का वरदानी हस्त मेरे ऊपर है, अनुभव करके देखो, है ना? तो इसीलिए कहा कि ये वरदानों को प्रैक्टिकल प्रयोगशाला में प्रयोग करके देखो, अनुभव मिलेगा। लेकिन अगर हम बेपरवाह रहे, लापरवाह रहे, वरदानी भूल गए, स्लोगन भी भूल गए, क्या कहा बाबा ने, अनुभवी बने नहीं, कोई हमें सुनाता है मालूम है, मालूम है ना? अब मालूम है लेकिन अगर अनुभवी नहीं बने तो विघ्न तो आएगा, विघ्न आएगा, विघ्न हमें अनुभवी बनाएगा। अगर फिर भी जो मालूम है उस समय उसका प्रयोग नहीं किया गया, उस विघ्न के समय, तो ठोकर तो लगेगी, और ठोकर लग करके अगर सीखा तो भी चलो ठीक है, समय से पहले सीख तो गए। क्योंकि जब तक, कई बार कई लोग हमें क्या कहते हैं, बहन जी क्या करें, बार बार ये पेपर मेरे सामने बार बार आता है, बार बार, माना आप हर बार फेल हो रहे हैं। बार कोई पेपर बार बार क्यों आता है आपके सामने? क्योंकि फेल हो रहे हैं। जैसे कॉलेज में अगर जितनी बार एक सब्जेक्ट में फेल हो तो एटीकेटी देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी, बताओ? हर बार आपको वही पेपर अपीयर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा, जब तक आप उसमें पास ना हो जाओ। तो जीवन के अंदर कोई पेपर बार बार आपके सामने आता है, इसका मतलब आप फेल हो रहे हैं, इसका मतलब आप गलत ज्ञान की कोई बात का प्रयोग कर रहे हैं, सही बात का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए जब तक आप पास नहीं होंगे, पेपर आता ही रहेगा, विघ्न आता ही रहेगा। या तो एक बार में पास कर लो, दिखा दो बाबा को भी, हाँ बाबा आपके हर ज्ञान की बात को मैंने अच्छे से जीवन के अंदर अप्लाई किया है, प्रयोग किया हुआ है और मैं पास, तो उसके सामने फिर कोई विघ्न आता नहीं है। लेकिन एक तो प्रयोग कर नहीं रहे हैं, अनुभवी बन नहीं रहे, और बाबा जानता है कि अंतिम समय किस तरह यही पेपर बहुत विकराल रूप में आना है। और अगर क्योंकि बाबा का प्यार तो बच्चों से है ना, बाबा तो समय को जानता है ना कि आने वाला समय कौन सा है, और इसीलिए जब बाबा जानता है कि ये समय आएगा और उस समय ये बच्चे के सामने ये पेपर आएगा, फेल हो जाएगा, तो उसको अनुभवी बनाना जरूरी है। तो इसीलिए अगर विघ्न आता है, अनुभवी बनाने आता है, तो उसको उस रूप से देखेंगे तो ये लगन लगेगी कि मुझे पास होना है। और जब मुझे पास होना ही है इस विघ्न के अंदर, अर्थात अनुभवी बनना है, और जैसे ही अनुभवी बन जाएंगे उसके बाद दोबारा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पास हो गए ना आप, जिस पेपर में पास हो गए वो पेपर बार बार थोड़ी देना पड़ता है। और इसीलिए जैसे ही पास हो गए तो बस आगे बढ़ गए, और वो लेसन ऐसा याद रहेगा कि अंतिम समय में उसका विकराल रूप भी अगर आए तो भी कॉन्फिडेंस, एक बार पास किया है कॉन्फिडेंस है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ेगा जो उसको सहजता से पास कर देंगे। और अगर वही अंतिम पेपर भी होगा तो भी सहजता से पास करते हुए बाबा की याद में मुस्कुराते हुए जैसे शरीर से अलग हो, तो हमेशा के लिए क्या होगा? पास विथ ऑनर, उसको कहा जाता है पास विथ ऑनर। तो लास्ट घड़ी का जो पास विथ ऑनर होता है वही तो 108 की माला में जाएगा। तब तक बाबा कहे 108 की माला फिक्स होने वाली नहीं, तो विघ्न को थैंक्स देना तो पड़ेगा। अनुभवी बनाने आए हैं, सीख देने आए। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने कही कि चुनौती हरेक के सामने आती है, लेकिन जो चुनौती के वक्त सही निर्णय लेता है वो पास हो जाता है। लेकिन चुनौती के वक्त जो गलत निर्णय लेता है, और गलत निर्णय क्यों लेता है? माइंड कंफ्यूज्ड है, अर्थात दुविधा में है, इसलिए गलत निर्णय लिया। उसी के लिए बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे अंतिम समय जो बातें आएगी, उस समय अगर माइंड की लाइन क्लियर होगी बाबा के साथ, मनमना भाव वाली स्थिति होगी, तो बाबा की जो टचिंग होगी इतनी एक्यूरेट होगी और आप उसी अनुसार करेंगे और पास हो जाएंगे। लेकिन अगर लास्ट मोमेंट आपका माइंड कंफ्यूज्ड है, दुविधा में है, बाबा टचिंग दे रहा है लेकिन टचिंग कैच ही नहीं हो रही है, तो क्या होगा? फेल हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये चुनौती जब आते हैं तो ये हमें प्रैक्टिकल आईना दिखाती है कि मेरा माइंड कंफ्यूज स्टेज में है या क्लियर स्टेज में है। ये नहीं कि एक बार कंफ्यूज होता है, जिसका नेचर होता है ना कंफ्यूज होना, वो हर बार ही कंफ्यूज होता है, नेचर ही है उसका कंफ्यूज होना। इसलिए बाबा कहते हैं कि बुद्धि योग जितना बाबा से लगा होगा उतना माइंड क्लियर रहेगा। लेकिन अगर बुद्धि योग ठीक नहीं है तो माइंड की क्लैरिटी भी नहीं है, स्पष्टता नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति हर बार कंफ्यूज होता। तो जब भी हम गलत निर्णय लेते हैं, जो हर बार जिंदगी में जब कोई बात आती है, चुनौती आती है और गलत निर्णय ले लिया, तो क्या होगा? पश्चाताप। जब भी दूसरे को देखते हैं कि ये आगे निकल गए, मेरे पीछे से ये आगे निकल गए, मेरे पीछे से ये आगे निकल, तो पश्चाताप नहीं होगा। क्या करें, उस समय मेरे पास भी मौका था, मेरे सामने भी वो बात आई थी, लेकिन माइंड मेरा कंफ्यूज था, मैं सही निर्णय नहीं ले सका, इसलिए ये हालत हुई। तो पश्चाताप होगा। इसीलिए बाबा कहे कि अंतिम समय आपको पश्चाताप नहीं होना चाहिए। इसलिए हर बार जब कोई विघ्न आता है तो उस समय देख लो कि आपका माइंड कंफ्यूज स्टेज में है या स्पष्ट स्टेज में, किसमें है। क्लियर आईना मिल रहा है जो आपको दिखा रहा है कि अगर अंतिम समय ऐसे कंफ्यूज स्थिति रही तो क्या होगा, जो बातें आएगी पास होना असंभव हो जाएगा। इसीलिए विघ्न आते ही है आगे बढ़ाने के लिए। अगर स्पष्ट मन की स्थिति है, सही निर्णय ले लिया तो क्या होगा, अवसर खुलने लगेंगे। जैसे वो खेल नहीं दिखाते हैं, सिम सिम दरवाजा खुल जा, सिम सिम दरवाजा खुल जा, है ना। इतनी माइंड की स्थिति हमारी स्पष्ट हो कि जो भी बात आई तो हमें पता है ये निर्णय लिया, और निर्णय लेते ही सिम सिम दरवाजा खुल जा, आगे बढ़ो, है ना। रुकावट आपको रोक नहीं सकती। लगेगा कोई धक्का देने आया है, भाई ये चल रहा है ना, उसको धक्का दे दो गिर जाएगा। कोई पीछे से धक्का देने आया है गिराने के हिसाब से, लेकिन उसी समय आपके माइंड की स्पष्टता के कारण आपको पंख खुल जाएगा, उड़ने लगेंगे। आप उसको थैंक्स देंगे, थैंक यू तुमने मुझे धक्का दिया, मैं उड़ गया। ये है माइंड की स्पष्टता। बातें न आए ये हो नहीं सकती है। बाबा कहे बातें तो माया अंतिम घड़ी तक लानी है, वो लास्ट जोर भी लगाने का प्रयत्न करेगी कि इसको फेल कर दूं। इसीलिए कई बार जब बच्चे बाबा को कहते हैं योग में, बाबा बहुत विघ्न हो गया, अभी बस करो बस करो, बाबा क्या कहेगा, बच्चे लास्ट समय में तुम्हें फेल होना है क्या। बाबा तो चाहेगा ना, जैसे मुझे याद आता है कि एक बार एक विद्यार्थी स्टूडेंट मेरे पास आए थे और कहा दीदी एक प्रॉब्लम है। कहा क्या प्रॉब्लम है, तो कहा मेरा टीचर जो है ना वो ठीक नहीं है स्कूल में, स्कूल का टीचर। मैंने कहा कौन सा टीचर, स्कूल का या सेंटर का। बोले नहीं स्कूल का। मैंने कहा बोले मेरे को है ना सब लोग जाने के बाद मेरे को रोकता है, तुम रुको चलो, और दाखला मेरे को देता है, और मेरे को मैथ्स मेरे को बहुत कंटाला जनक होता है, और वो मुझे बिठा करके और सम्स देता है, सुलझाओ सुलझाओ, ये करो ये करो। मैंने कहा तो तुम्हें प्रैक्टिस मिल रही है ना, तो अच्छी बात है। बोले सारे लोग खेलने जाते और मुझे सम्स करना पड़ता है, ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्या करूं। मैंने कहा देखो ऐसा है कि एक बात बताऊं, वो टीचर का तुम फेवरेट स्टूडेंट हो। कहा नहीं टीचर, टीचर का मैं फेवरेट स्टूडेंट नहीं हूं। मैंने कहा उसका अंदर से तेरे से प्यार है तभी ऐसा हो रहा है। बोले प्यार हो तो मेरे को खेलने जाने देना चाहिए ना। मैंने कहा नहीं, वो देख नहीं सकता है तेरी कमजोरी को, और वो जानता है कि ये वीक है मैथ्स में, और इतनी सी बात के लिए ये पीछे हो जाएगा, फेल हो जाएगा, उसके परसेंटेज कम हो जाएगा, इसलिए भले सब खेलने जा रहे हैं तब तुमको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दे रहा है, करो करो करो, 10 सम्स और उसी प्रकार का दे देता है, क्योंकि उसको पता है ये वाला तेरे को नहीं आता है। सचमुच ऐसा हुआ कि जब वो पास होकर के आया तो उसने कहा दीदी सच्ची बात थी आपकी। मैंने कहा क्या, बोले मैं उस टीचर का फेवरेट स्टूडेंट था, है ना। तो इसी तरह आप बाबा के फेवरेट स्टूडेंट है, ये कैसे पता चलेगा? आप बाबा के फेवरेट स्टूडेंट है, परमात्मा परम शिक्षक है ना। तो जब वो देखता है कि ये बच्चा इसमें कमजोर है और इस छोटी सी कमजोरी के कारण ये फेल हो सकता है, तो बाबा क्या करेगा? एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देगा कि नहीं देगा? तो इसीलिए जब कोई कहता है कि मेरे सामने ये परीक्षा बार बार यही आती है, बार बार यही आती, अब क्या करे? तो इसका मतलब वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दे रहा है आपको, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दे रहा है कि ताकि तुम अंतिम समय में फेल ना हो। आज महसूस नहीं होगा, आज शायद कंटाला भी आ रहा होगा, लेकिन आप बाबा के फेवरेट स्टूडेंट है ये समझ लो, है ना। और जब पास हो जाएंगे ना, तब समझ में आएगा बाबा ने मेरे को कितनी प्रैक्टिस दिया था, तब मैं आज पास हो गया। तो फेवरेट स्टूडेंट है या नहीं है? हा? तो विघ्न आए तो क्या समझना चाहिए? बाबा क्या ये घड़ी घड़ी विघ्न आता है मेरे सामने, ये करना चाहिए या खुशी से थैंक्स बाबा एक और प्रैक्टिस हो जाएगी, पास हो जाएगा, क्या कहेंगे? हाँ, बाबा का थैंक्स करेंगे ना। ये खुशी होनी चाहिए कि मैं भगवान का फेवरेट स्टूडेंट हूँ, भगवान मुझे कितनी प्रैक्टिस दे रहे हैं, मैं कभी पास, मैं फेल ही नहीं हो सकता हूँ, हमेशा पास ही हो जाऊं, ये उसकी चाहना है। तो बताओ क्या होगा, खुशी होगी या दुखी हो जाएंगे पेपर देख करके? खुशी होंगी या पेपर देख के दुखी हो जाएंगे? अभी कोई भी विघ्न आए तो गणेश जी को याद करेंगे क्या? ये विघ्न हरता मेरे, विघ्न हर लो, जैसे भक्ति मार्ग में वो करना कुछ नहीं, विघ्न हरता मेरे, विघ्न हरो मेरे, विघ्न हरो, ऐसे विघ्न हर जाएगा क्या? उसकी महिमा करो, उसका गुणगान करो, आप तो सबके विघ्न हरने वाले हैं, मेरे भी हर लो। हाँ, बाबा को इस तरह से कहेंगे क्या? नहीं, बाबा कहे तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो, मैं तुझे फेल होते हुए नहीं देख सकता हूँ, और मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर ये कमजोरी है, इसीलिए बार बार ये विघ्न अलग अलग तरीके से आ करके, ताकि वो कमजोरी तेरी निकल जाए। ये तरीका है बाबा का। तो विघ्न आना तो अच्छी बात है ना, खूब आए ना, खूब आए या थक गए हैं? अभी विघ्न आना ही नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए? तो इसीलिए बाबा कई बार कहते बच्चे ये तूफान को तूफान नहीं समझो, तोहफा समझो, ये तोहफा है। कई बार बाबा कहते हैं कि बच्चे ये तो पेपर टाइगर है, कुछ नहीं है, खोखला है, बाहर का खाली रूप देख करके डर क्यों जाते हो? कहने का भावार्थ अंदर में जो डर है, क्योंकि डर हमें कभी भी सही निर्णय लेने नहीं देता है, फेल कर देता है। इसलिए बाबा कहे ये पेपर टाइगर है, मिकी माउस है, इसको देख करके डरो मत, लेकिन शिव शक्ति बन जाओ, पांडव बन जाओ, विजयी होने वाले पांडव है हम, तो वो पेपर टाइगर क्या करेगा? बस सामने खड़ा होगा, बस और कुछ कर तो नहीं सकता है। तो इसी तरह जीवन के अंदर ये बातें जो आती है, कहीं तो पेपर टाइगर होती है, कहीं मिक्की माउस होते हैं। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे सदा अलर्ट रहो, अटेंशन में रहो, बातें तो आएगी, क्योंकि माया का प्रयास तो यही रहेगा जितने निकाल सके वो उसको क्या करेगी, निकालने का प्रयत्न जरूर करेगी कि भगवान के ईश्वर के मुरीद बनने जा रहे हैं, जितने निकल सको निकाल लो, अपने तरफ कर लो, वो तो यही प्रयास में रहेगी ना माया, तो इसीलिए बाबा कहे बच्चे ये पेपर टाइगर से डरो नहीं, माया पेपर टाइगर सामने कर देती है और तुम बच्चे डर जाते हो, तो डरो नहीं, लेकिन हमेशा समझो कि ये पेपर अगर आया भी है तो मुझे पास होकर के दिखाना है। अच्छा, जब ऐसा लगे कि सचमुच कोई बहुत बड़ा विघ्न है और आप महसूस कर रहे हैं कि मेरी क्षमता से बाहर है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए, उसकी विधि बाबा ने बताई है कि बच्चे अमृत वेले बैठो बाबा के सामने, अव्यक्त बाबा के सामने वतन में स्वयं को इमर्ज करो, बाबा से खूब प्रकाश लो, जैसे बाबा की प्रकृति से इतनी प्रकाश पावरफुल मुझे मिल रही है, अमृत वेले ही बाबा से विजय का तिलक अपने मस्तक पर लो और साथ ही साथ बाबा का वरदानी हस्त अपने ऊपर अनुभव करो कि बाबा इतने वरदानों से भरपूर कर रहा है। जब ये अनुभव करेंगे तो वो क्षमता बाबा भर रहा है अंदर में, जो क्षमता आपको चाहिए, जिसके लिए आप समझते हो कि मेरे में नहीं है, भाई ये पेपर को पार करने के लिए ये क्षमता चाहिए, हिम्मत ऐसी चाहिए और वो हिम्मत मेरे में नहीं है या वो क्षमता मेरे में नहीं है, तो बाबा से प्रकाश के रूप में वही क्षमता का आवाहन करो। अमृत वेले जब आवाहन करते हैं उस शक्ति का, उस क्षमता का, तो आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली लगातार जब रोज अमृत वेले योग में वही शक्ति और क्षमता से अपने आप को भरते जाओ भरते जाओ, कुछ दिन का प्रयोग करो, 7 दिन का प्रयोग करो या 21 दिन का प्रयोग करो, एक ही स्थान पर बैठ करके बाबा से, जब कोई ऐसा बड़ा विघ्न हो जिसके लिए आप समझते हो कि इसको पार करने की क्षमता मुझ में नहीं है, तो 21 दिन का वो प्रयोग करो, बाबा से रोज शक्ति प्रकाश अपने में भरो, विजय का तिलक लो, बाबा के वरदानी हाथ के बच्चे विजयी भव हो, ये वरदान ले लो बाबा से, और आप प्रैक्टिकल देखेंगे कि 21 दिन पूरे होते ही आप जरूर उसको पार कर ही लेंगे। ये हो नहीं सकता है कि नहीं पार कर सके, या तो जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे आप भोजन को और पानी को चार्ज करके लो, प्रैक्टिकल ये विधि है, विज्ञान भी उस विधि को मानता है कि आज पानी जो है ये वाइब्रेशंस को कैच करती है, तो उस समय जब पानी पीते हैं तो दृष्टि देते हुए उसमें इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन डाल करके उसको स्वीकार करो, आप देखेंगे कि कुछ ही समय के अंदर आपके अंदर वो क्षमता विकसित हो जाए, बाबा जैसे आपको भर देगा उस क्षमता से, और वो पेपर को पार करने की जो आप में क्षमता नहीं थी वो भी अदृश्य रूप में ऐसी आप में भर जाएगी, और जब आप पार करेंगे तो आपको महसूस होगा मेरे में तो शक्ति नहीं थी, लेकिन ऐसा लगा बाबा ने ये शक्ति ऐसी भरी जो पार कर, ये फील होगा कि बाबा कैसे अदृश्य रूप में वो शक्ति भरते हुए, वो क्षमता भरते हुए आपको पार करा दे। इसीलिए बाबा कहे जब आप ये सोमान लेते हो, बहुत बड़ा विघ्न है, और आप प्रतिदिन ये वरदान बाबा से लो, मैं विघ्न विनाशक हूँ, तो उस विघ्न को पार करना कोई बड़ी बात नहीं, सहज हो जाए। तो इसीलिए जीवन के अंदर उसका प्रैक्टिकल अनुभव, या अंतिम बात विघ्नों को पार करने की, गणेश जी को कहा गया विघ्न विनाशक, लेकिन प्रैक्टिकल गणेश जी विघ्न विनाशक कैसे हैं? गणेश चतुर्थी आती है तो बहने आध्यात्मिक रहस्य क्या समझाती है गणेश चतुर्थी का? ये गणेश जी माना अष्ट शक्ति स्वरूप। सारे ही अष्ट शक्तियां जो है वो गणेश जी के अंदर है। भावार्थ ये अष्ट विनायक कहते हैं ना उसको, क्यों कहा अष्ट विनायक? जो हमारी अष्ट शक्ति हम दिखाते ना कोर्स में, ये अष्ट शक्ति स्वरूप गणेश जी को दिखाया है। सहन करने की शक्ति, सुनने की शक्ति, परख शक्ति, आंखें बहुत छोटी है, हाथी का सर क्यों दिखाया उसको, बड़ा पेट, समाने की शक्ति, तो सारी अष्ट शक्ति, इसीलिए उसको अष्ट विनायक कहते हैं। कि ये आठों शक्ति जिसने धारण की हुई है, तो बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि बच्चे जब तुम भी ये आठों शक्ति धारण कर लेंगे और हर पेपर पर विजयी हो जाएंगे, हर पेपर में विजयी हो जाए, तो अष्ट की माला में आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, अष्ट विनायक बन जाएंगे। लेकिन वो अष्ट शक्ति का प्रयोग भी कैसे करना है? विनय से, विनम्रता से। उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए, तभी उसको कहा अष्ट विनायक। लेकिन उसका प्रयोग करने के लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है कई बार मुरली में, कि बच्चे जब सहन करने का समय आए तो सामना नहीं करना चाहिए, उल्टा नहीं करना चाहिए, नहीं तो शक्ति क्या हो जाएगी, गलत परिणाम ले आएंगी। तो इसीलिए अष्ट शक्ति स्वरूप होना, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करना, तो बाबा कहे सीट पर सेट होकर के ऑर्डर करो तो वह शक्ति जी हजूर करके आकर के हाजिर हो जाएंगी और आपको पास करा देंगी। लेकिन कई बार कई लोग कहते हैं समय बीत जाने के बाद महसूस हुआ, थोड़ा सहन कर लेते थे ना तो ठीक हो जाता था, थोड़ा समा लेते थे ना तो ठीक हो जाता था, बाद में समझ आई, उस वक्त समझ नहीं आई, या उस वक्त बहुत आवाहन किया सहन शक्ति का, लेकिन सहन शक्ति के बदले गुस्सा आ गया हमको, तो गलत क्यों हो रहा है? तो बाबा ने उसका भी उत्तर दिया हुआ है कि बच्चे सीट पर सेट होकर के ऑर्डर नहीं करेंगे तो वो शक्तियां जो आपकी सेवाधारी है वो आपका कैसे मानेंगे। बाबा कई बार उदाहरण देते हैं कि कोई अगर प्राइम मिनिस्टर की सीट पर होता है तो हर कोई ऑर्डर मानता है, उसका हर ऑर्डर को स्वीकार करता है, लेकिन अगर वो प्राइम मिनिस्टर की सीट से उतर गया, उतर जाने के बाद अगर ऑर्डर भी किया तो कौन मानेगा उसका ऑर्डर, मानेगा कोई? तो इसी तरह आप भी उस सीट पर सेट होकर के ऑर्डर करो तो ये सारी शक्तियां आपके सेवाधारी है वो भी आपके ऑर्डर को मानेगी। लेकिन अगर आप सीट पर सेट नहीं, आप मिट्टी में खेल रहे हैं और शक्ति का आह्वान करो है मिट्टी में, देह अभिमान की मिट्टी में है और देह अभिमान की मिट्टी में खेल रहे हैं और ऑर्डर करो शक्ति का, तुम आओ, मानेगी वो शक्ति? कभी नहीं मानेगी। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं आप सभी को जन्म से ही बाबा का वरदान मिला हुआ है, ये अष्ट शक्तियां प्राप्त है, परंतु या तो गलत समय पर गलत शक्ति का प्रयोग कर लेते हैं, सहन करने के जगह सामना कर देते हैं, है ना, सहयोग देने के बजाय संकीर्ण कर लेते हैं, देना ही नहीं सहयोग, उल्टा हो गया ना, तो गलत परिणाम आएगा। या तो आप सीट से नीचे उतर गए, देह अभिमान की स्थिति में स्थित होकर के ऑर्डर कर रहे हैं कि भाई सहन शक्ति तू आ जा, और फिर कहते सहन शक्ति आई नहीं और गुस्सा आ गया। अब देह अभिमान जहां होगा तो गुस्सा ही आएगा ना, किस सीट पर बैठ करके ऑर्डर कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहे अपने आप को पहले चेक करो, मैं आत्मिक स्थिति में स्थित हूं, उस सीट पर सेट होकर के फिर आप आवाहन करो शक्ति का। और जब शक्ति का इस तरह से आवाहन करते हैं तो वो शक्ति हाजिर हो जाएंगी, कहेंगे जी हजूर मैं हाजिर हूं। और जब उस शक्ति का प्रयोग करते हैं तो विघ्न को विनाश करना सहज हो जाता है, क्योंकि गणेश जी को विघ्न विनाशक इसीलिए कहा क्योंकि ये अष्ट शक्ति स्वरूप है, अष्ट शक्ति स्वरूप। तो हर शक्ति का प्रयोग उस स्वमान की सीट पर सेट होकर के करके देखो, क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं मानेंगी शक्ति आपका ऑर्डर, मानेंगी आपको विजयी बनाएगी। उसकी जिम्मेवारी है कि जो सीट पर है उसको विजयी बनाना है मुझे। तो इसीलिए बाबा कहे पहले चेक करो कि आप सीट पर हो जब आवाहन कर रहे हैं, तब गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि दिखाई है कि यथार्थ विधि से सिद्धि यानी सफलता को प्राप्त करने वाले हैं। यथार्थ विधि से, जब यथार्थ विधि से उस सफलता को सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात के अष्ट की माला में सहज आ सकती है। तो विघ्न विनाशक माना ही सिद्धि स्वरूप बनने के लिए यथार्थ विधि से उस शक्ति का प्रयोग करो, विघ्न विनाशक बनो और अष्ट की माला में आना संभव है। बाबा कहते जिसके पास फुल या आठों शक्तियां फुल विकसित होगी और जो सही समय पर सही शक्ति का प्रयोग करते जाते हैं और हर विघ्न को इस तरह से विघ्न में विजयी होते जाते हैं तो अष्ट की माला में सहजता से आ, तो ये विघ्न ही आपको अष्ट की माला में भी ले जाएंगे। अष्ट की माला में जाना चाहते, चलो अष्ट नहीं 108 की माला में जाना ही चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते, जाना चाहते सारे राजकोट वाले जाना चाहते हैं, सारे 108 तो ज्यादा ही है, यहाँ पर 108 से ज्यादा ही है। हाँ लड़िया लगा देगा बाबा, चलो 16108 में तो आ ही जाना है फिर तो, है ना, तो 16108 में तो आना ही है रॉयल फैमिली में, वो भी अधिकारी माना जाता है। तो इसीलिए 16108 की माला में तो सारे राजकोट वाले पहुंच ही जाएंगे कि नहीं। अरे राजकोट वाले ने ही टर्न ले लिया सारे 16108 में, तो बाकी सब कहाँ जाएंगे। तो सदा ही विघ्न विनाशक बने रहो, विघ्न विनाशक हो करके हर परिस्थिति रूपी पेपर को पार करना ही है, और विजयी भव का वरदान आप सब अमृत वेले बाबा से लेकर के ही यहाँ से जाना है, ठीक है। अच्छा ओम शांति।
राहों पर चला करें हम चल। Oh.